मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत तो मैं आज भी आप सबसे बेसिक्स के बारे में कुछ बातें करूंगा, कैसे बेसिक्स को पहचाने। लेकिन आइए पहले एक दो जो दूसरी घटनाएं हैं और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस के लिहाज से आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में जानना ही चाहिए, उस पर कुछ बातें करते हैं। अभी आपने पश्चिम बंगाल में एक जो घटना घटित हुई, अरुचिकर प्रसंग ही है, आप कह लीजिए कि वो आपने अखबारों में पढ़ा कि हमारे प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल गए थे, वहाँ जो तूफान के कारण जो क्षति हुई है उसका जायजा लेने के लिए, फिर मीटिंग वगैरह हो रही थी। उसमें आप देखते हैं कि किस तरह से बड़ा अरुचिकर जैसा विवाद बाहर सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी की उस मीटिंग में पहले वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नहीं आईं, आने के बाद फिर उन्होंने कागज़ थमाया और इसके बाद फिर वो चली गईं, और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये हुआ कि उन्होंने ड्यू रेस्पेक्ट जो दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी का तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट ने तबादला करके कहा कि आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में रिपोर्ट कीजिए, और अब स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने साफ कह दिया है कि वो चीफ सेक्रेटरी को रिलीव नहीं करेंगी। ये एक अरुचिकर प्रसंग घटा। देखिए, चूंकि आप एक आईएएस अफसर बनने जा रहे हैं इसलिए आपको ऐसी घटनाओं के प्रति बकायदे अपनी नजरें खुली रखनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर चीफ सेक्रेटरी, ये चीफ सेक्रेटरी क्या है? ठीक है, वो तो चीफ सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल के हैं, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या अधिकार है कि वो उनका ट्रांसफर कर दे और अपने यहां बुला ले? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर है? और चलिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो किसी चीफ सेक्रेटरी का स्थानांतरण कर सकते हैं, अपने पास बुला सकते हैं, तो फिर क्या राज्य सरकार को ये पावर है कि वो उसे रिलीव ही न करे? आप देख रहे हैं कि कैसे केंद्र और राज्य के बीच में आपको एक टसल दिखाई दे रही है। टसल का एक दूसरा भाग कि प्रधानमंत्री वहां मीटिंग ले रहे हैं, जो भी है उसमें सीएम नहीं आई, बाद में उन्होंने अपनी मांग दे करके चले गए। विवाद आप देखिए तो बाद में जो सीएम है पश्चिम बंगाल की, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और जो भी उन्होंने अपनी बात रखी, और उन्होंने एक आरोप लगाया कि उस मीटिंग में जो विपक्ष के जो नेता हैं वो भी उपस्थित थे। चलिए देखिए, लोकतंत्र में तो विपक्ष का नेता बहुत मायने रखता है भाई, बुलाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनका जो आरोप था वो ये था कि भाई इसी के साथ ही और दूसरे राज्यों की भी इस तरीके की मीटिंग हुई है, गुजरात की हुई और दूसरे स्टेट की हुई, तो उसमें विपक्ष के नेता क्यों नहीं बुलाए गए, उसमें भी बुलाए जाने चाहिए। तो अगर आप तर्क के आधार पर सोचें तो उनका भी जो अब कहना है वो बिल्कुल जायज है। यहाँ इसलिए बुलाया गया क्योंकि ये जो विपक्ष के नेता हैं ये वही लीडर हैं जो पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, इसके बाद पाला बदल करके वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद इन्होंने ही ममता बनर्जी जी को MLA के अभी जो चुनाव हुए थे उसमें पराजित किया है। तो वहां के सीएम का कहना है कि ऐसा करके वो मुझे अपमानित करना चाह रहे थे। चलिए, ये उनका कहना है। तो यहां भी आपको एक केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति दिख रही है। अब सवाल यह है कि ये इस घटना की मैं चर्चा आपके सामने कर क्यों रहा हूं, आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए, जो चीफ सेक्रेटरी और जो दूसरी बातें हैं इन्हें आपको अपने ढंग से जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो खासकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आपके जो जनरल स्टडीज मेंस का सेकंड पेपर है उसका एक अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, इसका जो इस्तेमाल हो सकता है जो अभी फिलहाल और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है वो है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। फेडरल स्ट्रक्चर हमारा एक संघात्मक स्वरूप है ना, राज्यों के अपने अधिकार हैं, केंद्र के अपने अधिकार हैं, हमारे यहाँ बाकायदे विषयों का विभाजन कर दिया गया है, सब कुछ व्यवस्था की गई है ना, फेडरल स्ट्रक्चर है। अगर इस तरह के टकराव हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये इस बात को बताता है कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ खामियां हैं। आप देखिए, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर अगर इस तरह से टसल होते रहें, अब अभी आप देख रहे हैं कि खासकर कोरोना के वैक्सीन को लेकर के कैसे राज्य और केंद्रों के बीच में एक टकराव की स्थिति बनी हुई है, तो ये शुभ संकेत नहीं है। और फिर हम देख रहे हैं कि सिविल सर्वेंट के मामले में भी वही स्थिति हो रही है। तो ये एक ऐसे इंसिडेंस हैं कि अगर हाल में कोई एग्जाम आप दे रहे हों तो उसमें आपको इन उदाहरणों को कोट करना चाहिए, है ना, करंट है ये। और इस बात का आपको बकायदे ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हों और उसमें कोई उदाहरण देना चाह रहे हों तो लेटेस्ट एग्जाम्पल लीजिए। राइट फ्रेंड्स, तो इसको आप थोड़ा सा अपने ढंग से जानने और समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी जो घटना है दोस्तों वो लक्षद्वीप को लेकर के है। आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ राष्ट्रपति एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं और फिर वही एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ के सर्वे सर्वा होते हैं आप कह लीजिए, और अभी प्रफुल्ल जो खोड़ा पटेल हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अभी वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने कुछ नियम लागू किए, उन नियमों का विरोध किया जा रहा है। हालांकि इसके पीछे उन्होंने जो रीज़न बताया है, जो सरकार का कहना है वो ये है कि इसको मालदीव के तर्ज पर हम डेवलप करना चाह रहे हैं, यानी कि पर्यटन का एक बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाना चाह रहे हैं। अब उन्होंने जो नियम लागू किए हैं उसको लक्षद्वीप के लोग भी उसका विरोध कर रहे हैं, और साथ ही साथ केरल भी उसका विरोध कर रहा है। कुछ जो जिनका विरोध हो रहा है, देखिए वहाँ यह है कि बीफ को बैन कर दिया गया कि बीफ वहाँ नहीं बिकेगा, कोई नहीं खा सकता है। एक कानून कुछ इस तरीके से लागू किया गया है कि जिनके भी दो से अधिक बच्चे हैं वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, इसका विरोध हो रहा है। वहाँ एक असामाजिक गतिविधि रोकथाम कानून पारित किया गया है पासा, उसके विरोध में भी बातें हो रही हैं। भूमि कानून भी एक लागू किया गया है जिसमें यह है कि सरकार कोई भी भूमि ले सकती है, कुछ इस तरह के कानून है, उसके डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो इनका विरोध हो रहा है, केरल भी विरोध कर रहा है, राइट। तो अब देखते हैं कि क्या परिणति होती है, अंततः यह क्या रूप लेता है। लेकिन यह भी एक घटना है जो आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटेड वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इसका मतलब है कि वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र उत्तरदायी है। बस इतनी आप अपने दिमाग में बात रखिएगा। आइए अब मुख्य विषय पर आते हैं, और वो है कि बेसिक्स को आप पहचानेंगे कैसे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग अभी, मैं खासकर प्री एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लेकर के जो बातें कर रहा हूँ उसे बहुत रुचि ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि मैं भी आप लोगों की तरह ही मनुष्य ही हूँ, और जब आप लोगों में इतना उत्साह मुझे दिखाई देगा तो कहीं ना कहीं वह उत्साह मेरे अंदर भी आएगा कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उसमें आप लोग रुचि ले रहे हैं, आप लोगों को लाभ मिल रहा है, है ना। तो मेरा हौसला बढ़ता है, तो इस हौसला अफजाई के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे मेल आ रहे हैं, और मैं ध्यान दे रहा हूँ कि धीरे धीरे मुझे इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। एक स्टूडेंट मान लीजिए कि उसने 10 दिन पहले जो मेल लिखा था, कहीं ना कहीं जब थोड़े से भी अगर ठीक ठाक मेल आते हैं तो नाम दिमाग में रहता है, और अब 10 दिन बाद जब उसका मेल आ रहा है तो उसमें रिफाइनमेंट दिखाई दे रहा है। इसीलिए खासकर मैं इसे विस्तार के साथ आप लोगों से डिस्कस भी कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं फिर से आज ले रहा हूँ, और वो है क्वेश्चन नंबर 13, डी सीरीज क्वेश्चन नंबर 13। एक मेल में मुझे कहा गया है कि सर आप क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में भी बात करें, 11 के बारे में हम लोगों ने बात की है, बकायदे सार्वजनिक निवेश से संबंधित जो क्वेश्चन नंबर था वो 11 था। मैं अभी 12 को छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं 12 के बारे में बात करूँगा, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, क्योंकि अदरवाइज फिर आप यही सोचेंगे कि सर तो अपने अपनी सुविधा के हिसाब से बातें कर लेते हैं। नहीं, किसी पर भी बात की जा सकती है। हो सकता है कि हम यही बात करें कि भैया इसको टच मत कीजिए, लेकिन बात तो की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। हाल के बीते दिनों में ध्यान रखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक / कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थीं, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार की कुछ पॉलिसीज रही होंगी या कुछ फैक्टर्स रहे होंगे जो खासकर चावल के मूल्यों को प्रभावित कर रही थी। का मतलब है कि चावल के मूल्य उसके कारण बढ़ भी सकते हैं, चावल के मूल्य उसके कारण कम भी हो सकते हैं, और याद रखें कि स्थिर भी हो सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ रहा था। आप ये मत समझिएगा कि प्रभावित कर रही थी का मतलब यही है कि बढ़ रही थी कीमतें या कम हो रही थी, नहीं तो अक्सर तो कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन अगर स्थिर भी है तब भी उसको प्रभावित कर रही, क्योंकि सरकार इस तरह की नीतियां ला रही है, इस तरह के कदम उठा रही है कि मूल्य बढ़ने ना पाए, मूल्य गिरने ना पाए, स्थिर रहे, प्रभावित कर रही थी, प्रभावित शब्द। और हाल के बीते दिनों में, तो अब नीचे जो भी विकल्प, जो भी स्टेटमेंट दिए जाएंगे तो सीधी सी बात है कि वो सरकार से संबंधित होंगे, और सरकार ने ऐसा किया है। अब इसका प्रभाव मूल्य पर पड़ा है या नहीं पड़ा है, ये अलग बात है। तो आपका जो दिमाग है वो प्रश्न को फटाफट समझ लेता है अगर उसका अभ्यास हो गया है तो। अब आप देखिए कि विकल्प दिए गए हैं, पहला न्यूनतम समर्थन मूल्य, दूसरा सरकार द्वारा व्यापार करना, तीसरा सरकार द्वारा भंडारण करना, चौथा उपभोक्ता सहायी किया, जिसे हम आगे उन्होंने इंग्लिश में लिख भी दिया है सब्सिडीज, क्योंकि सहायी किया हो सकता है कि ना समझ में आए तो मदद के लिए कम से कम सब्सिडीज लिख दी गई है, लिख दिया गया है। इसके बाद दिया गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए ए बी सी डी है, हम उस पर नहीं जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न है, राइट। अब देखिए कि इस प्रश्न में बेसिक क्या है, बेसिक क्या है। याद रखिए चावल से कोई लेना देना नहीं है, बीते दिनों से कोई लेना देना नहीं है। इसके जरिए वो केवल यह जानना चाह रहा है कि आप इस बात को समझते हैं या नहीं समझते हैं कि किसी भी वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता कैसे है। बस दैट्स ऑल, केवल वही जानना चाह रहा है। अगर आप इसका सीधे सीधे उत्तर किसी भी किताब में ढूंढेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। किसी मैगजीन में भी ढूंढेंगे तो कहीं भी मैगजीन में आपको नहीं मिलेगा कि सरकार के इन इन नीतियों के कारण मूल्यों पर प्रभाव पड़ रहा है, कहीं नहीं मिलेगा। आप ढूंढ के देख लीजिए, बिल्कुल नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता है। तो फिर यह प्रश्न पूछा क्यों गया? सीधी सी बात है कि वो आपके कॉमन सेंस को जानना चाह रहा है कि आप में कॉमन सेंस है कि नहीं है। कॉमन सेंस का क्या मतलब है यहां कि जो चावल का मूल्य है उन पर किन किन का प्रभाव पड़ सकता है। और इसमें उन्होंने मार्केट को नहीं लिया है। देखिए मार्केट की बहुत सारी चीजें हैं जो मूल्यों को निर्धारित करते हैं। मांग और पूर्ति का सिद्धांत उसका सबसे प्रोमिनेंट सिद्धांत है। यहां उन्होंने चार चीज बातें दी हैं और अब आपको इन चारों को ये एनालाइज करना है कि इनका प्रभाव मूल्य पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसकी जो बेसिक है, इसका जो बेसिक है जिसको आप जिसकी आपको पहचान करनी है, वह है मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व। कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो मूल्य को प्रभावित करते हैं? दोस्तों यहां मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट को याद दिलाना चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स में बकायदे इस पर एक लेक्चर है कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो मूल्य को प्रभावित करते हैं। मूल्य का निर्धारण कैसे होता है वो एक अलग बात है। मूल्य का तो निर्धारण हो गया, निर्धारण होकर के वो चीज बाजार में आ गई, लेकिन जो बहुत से दूसरे फैक्टर्स हैं वो भी तो प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों अब आप सब इस पर विचार करें, कल हम लोग इस पर आगे बात करेंगे, राइट। मुख्य विषय के बारे में दोस्तों इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं गुरिंदर सिंह, दीप शिखा चक्रवर्ती, इमरान खान, सोनल सरताबे, ब्रिजेश शर्मा, पुष्पक देवांगन और भास्कर शर्मा। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।